नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा मसीही नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम इन दिनों व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 पद तक का अध्ययन किया था और उसमें हमने कुछ मुख्य विषयों पर विचार किया। आज हम अपने अध्ययन को उससे आगे बढ़ाएंगे और पद 6 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन इसके पूर्व कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का फिर से एक बार अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करना चाहते हैं, आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष करके हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो दुखी, चिंतित और परेशानी हालत में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सहायता करें ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे आपकी महान आशीषों को अपने जीवन में देख सकें। हम सब के साथ हो ताकि हम सब एक होकर आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद देते हैं पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम अपने अध्ययन को व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसके 6 पद से आरंभ करें। हम यहाँ पर पढ़ते हैं 13 अध्याय उसके 6 से 9 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरा सगा भाई व बेटा व बेटी व तेरी अर्धांगनी व प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें जिन्हें न तो तूने और न तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, तो तू उसकी न माना और न तो उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना, उसको अवश्य घात करना। उसके घात करने में पहले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठें। मित्रों, यह बहुत ही गंभीर बात है, यह बहुत ही मौलिक है। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो साधारण लोगों के बीच में विदेशी भाषा का इस्तेमाल बहुत तेजी से किया जा रहा है और जिस समाज में हम रहते हैं। मित्रों, यह मामला उस आदमी के लिए अति गंभीर है जिसे अपने ही भाई पर पहला पत्थर उठाकर मारने या पत्थरवाह करने की आज्ञा दी जाए कि वह अपने भाई को मार डाले। यह अवश्य ही बहुत गंभीर बात दिख पड़ती है, लेकिन ऐसा करने से अंत में बहुत से लोगों के जीवन बच जाएंगे। मेरे मित्रों, जब यहूदियों का उत्तरी राज्य मूर्ति पूजा करने लगा तो क्या हुआ? इसका लिखित रूप में हमें विवरण मिलता है कि हजारों लोग मारे गए और जितने लोग जैसे तैसे बच गए थे उन्हें सीरिया के क्रूर लोगों के पास बंधुआई अर्थात गुलामी में जाना पड़ा। क्या यह उचित नहीं होता कि वे झूठे भविष्यवक्ताओं को पत्थरवाह करके मार डालते जिनके द्वारा उन्होंने मूर्ति पूजा जैसा पाप किया, बजाय इसके कि उनके पापों के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मूर्ति पूजा के लिए मना किया था और झूठे भविष्यवक्ता उसी कार्य को उनसे करवा रहे थे जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे देश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हमारे बीच में कुछ ऐसे नम्र दिल या नम्रपंथी लोगों का समूह है जो राजगद्दी पर बैठे हैं, जिनका बाइबल के आधार, मसीही परिवार और मसीही जीवन से कोई संबंध नहीं है। वे व्यवस्था या वचन को हमारे मसीही परिप्रेक्ष्य में होकर नहीं देख पाते हैं जिस संदर्भ में वे लिखे गए हैं। मित्रों, इसका तात्पर्य अनाज्ञाकारिता से है, क्योंकि अनाज्ञाकारिता का परिणाम सजा है। आजकल रुपयों के कारण हमारे न्यायी अपराधियों को छोड़ देते हैं ताकि वे जाकर फिर से भ्रष्ट कार्य करें, अर्थात अपराध करें। मित्रों, एक शहर में एक व्यक्ति ने एक ही रात में 7 महिलाओं पर आक्रमण किया, बहुत से लोगों को जान से मार दिया और एक महिला के साथ उसने दुष्कर्म भी किया। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हुए और कुछ लोग बुरी तरह से घायल भी हुए। मित्रों, क्या उन न्यायियों को उस अपराधी को जो कई जानों के साथ खेल रहा था सजा नहीं देनी चाहिए थी? ध्यान दें कि परमेश्वर का तरीका सर्वोत्तम है ताकि बहुत से मासूम और निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। हमारी दूरदृष्टि बहुत कमजोर हो गई है और मुझे डर लगता है, क्योंकि आज हमें मृत्यु जैसी सजा बहुत कट्टरपंथी या कठोर लगती है। मित्रों, हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस पर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है, बहकाने का यत्न किया है। मेरे मित्रों, ध्यान दें कि परमेश्वर मृत्यु दंड की सजा देता है, और वर्तमान समय में हम सोचते हैं कि मृत्यु दंड की सजा ठीक नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे यह तो असभ्यता है। मैं सोचता हूं कि एक बड़ा समूह भी ऐसा ही सोचता है, क्योंकि वे परमेश्वर को भी कठोर समझते हैं। लेकिन मैं ऐसी भीड़ से पूछता हूं कि उन्होंने यह छोटा सा सभ्य समाज कहां से प्राप्त किया है, यह जो संस्कृति है वह कहां से प्राप्त की है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन से आया है। मेरे मित्रों, आजकल हम परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ते जा रहे हैं और भीड़ यह सोचती है कि यही अधिक अच्छा है। इस समय पर हमारे देश की गलियों और वहां के बड़े शहरों की सामान्य सड़कों पर चलने की तुलना में अफ्रीका के जंगलों में अकेले चलना ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हम लोग यह सोचते हैं कि किसी को भी मृत्यु दंड देना अनैतिक है, और इसी कारण हमने व्यवस्था को त्याग दिया है। मेरे मित्रों, एक बार मैं जंगलों में से होकर के जा रहा था और मुझे यहाँ पर शहरों की सड़कों से अच्छा महसूस हो रहा था। यद्यपि लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ कुछ जंगली लोग और जंगली कांटे हो सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर किसी के घर में भी ताले लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे मित्रों, मैं सोचता हूँ कि उन्हें हमारे क्षेत्र में प्रभु के सेवकों को भेजना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके क्षेत्रों में जाकर प्रभु की सेवा करें। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, और सब इसराइली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन्हें सच्चे परमेश्वर से अलग नहीं होना था। वे जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे, वे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहेंगे। जो भी हो, वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए और उन पर परमेश्वर का दंड आया। यही उन लोगों की कहानी है। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा है, यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम और देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें, तो पूछताछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे तो तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि उनको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना था। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका पूरी तरह से निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय उसके 15 और 16 पद में, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसको तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना और वह सदा के लिए डीह रहे, वह फिर बसाया ना जाए। मित्रों, फिर से यह एक गंभीर बात है कि एक पूरा शहर नष्ट हो सकता था। आप सोच कर देखिए कि पूरे शहर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मूर्ति पूजा नहीं करता हो? क्या उसने शहर को नाश करने का विरोध किया? क्या वे आराम से बैठे रहते थे? क्या कुछ नहीं करते थे? यदि वे इस विषय पर कुछ नहीं किए तो उनका न्याय भी दूसरे लोगों के साथ ही होना अवश्य है। मेरे मित्रों, आज बहुत से ऐसे मसीही हैं जो ये सोचते हैं कि मसीहियों को बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मसीही भी हैं जो महत्वपूर्ण विषयों का विचार नहीं करते हैं, अर्थात स्थिर नहीं रहते हैं, जबकि सत्य बिल्कुल प्रकट है। आप पुरानी कहावतों को तो सुने होंगे जिसमें बताया जाता है कि चुप रहना अच्छा होता है। मेरे मित्रों, कभी कभी चुप रहना और कोई कदम न उठाना अच्छा नहीं, अर्थात बहुत बुरा भी प्रमाणित होता है। जो बातें गलत है उन बातों का हमें विरोध करना चाहिए। इस प्रकार से शहरों में सब कुछ नष्ट किया जाना जरूरी था। आइए अब हम इस अध्याय के अंतिम पद को पढ़ें, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 17 पद है। लिखा है, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से जारी रखेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है इसराइल का भोजन। यद्यपि लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय इसराइलियों के भोजन के बारे में हमें बताता है, परंतु लय व्यवस्था के अध्ययन से अलग अर्थात हटकर कुछ स्पष्ट तरीके से इसे बताया गया है कि इसराइलियों को किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। इसका कारण यह था कि जो लय व्यवस्था में खाने से संबंधित नियम थे अब उनका पालन होगा या नहीं, जबकि वे जंगल में लगभग 40 वर्ष बिता चुके हैं। अन्य जातियों के समान विधियों को मानने की मनाही। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। मित्रों, ये वो बातें हैं जो अन्य जातियों की विधियां थी जो उन दिनों में कार्य थी, जिसे आज भी हम देखते हैं कि पृथ्वी के कई भागों में कुछ ऐसी जातियां हैं जो अभी भी इन्हीं विधियों का पालन करती हैं। यह उनके धर्म का एक भाग है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइए अब हम भोजन संबंधित नियम को देखें। मित्रों, लय व्यवस्था की पुस्तक में मैंने शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के बारे में स्पष्ट किया था। परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन के जो नियम दिए हैं वे मात्र एक धार्मिक विधि से बढ़कर थे। वास्तव में इसका एक शारीरिक लाभ भी था जब वे इन नियमों का पालन करते थे। मित्रों, यह कई सदियों तक चलता रहा और पालन भी किया गया। यूरोप में वर्षों पहले एक महामारी आई थी और केवल यहूदी लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके विपरीत बहुत सारे अन्य जाति के लोग उस महामारी में मारे गए थे। इसलिए बहुत से लोग यहूदियों पर इस महामारी का दोष लगाने लगे। मित्रों, यह बात सच है कि पृथ्वी में इस प्रकार की होने वाली घटनाओं से उनका कोई भी लेन देन नहीं था, परंतु उनके भोजन से संबंधित नियमों के पालन के कारण उस महामारी से भी उनको सुरक्षा मिली और वे बच गए। मित्रों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सब कुछ खाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सब लोग अपने भोजन को लेकर चिंतित हैं। मित्रों, परमेश्वर ने केवल आपको या मुझको ही विशेष भोजन संबंधी नियम नहीं दिए हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं। जो भी हो, अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम इस संसार में कुछ अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जल्दी ही हम प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। अब वह हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन से पशुओं का मांस खाया जा सकता है और कौन से पशुओं का मांस नहीं खाया जा सकता है। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 3-6 पद में लिखा है, तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, यखमूर, वनैली बकरी, साबर, नील गाय और वनैली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे व फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो। मित्रों, ये वो शुद्ध पशु थे जिनको वे खा सकते थे जो अलग किए गए थे। उन पशुओं को पहचानने के 2 चिन्ह थे। यह चिन्हात्मक रूप विश्वासियों को आत्मिक जीवन किस रीति से चलना चाहिए उसके बारे में बताता है। मित्रों, अलग किए गए दल का मतलब है अलग किए गए लोग। आज के परिवेश में मैं मसीही समाज में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कट्टरवादिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 10 आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं, परंतु इसके अलावा उन्होंने 25 और नई आज्ञाओं को जोड़ दिया है और वे उन्हीं के द्वारा जीते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, परमेश्वर का अलग करने वाला सिद्धांत ऐसा नहीं है। वास्तव में क्लीव शब्द के 2 विपरीत अर्थ हैं। क्लीव शब्द का अर्थ किसी से अलग होना या कई भागों में विभाजित होना या फिर किसी चीज से जुड़ जाना भी होता है। जब लेखक अलगाव शब्द का प्रयोग कर रहा है तो उसका यही मतलब है। कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी से अलग होने के लिए या फिर किसी से जुड़ने के लिए अलग हो सकता है। यह किसी कार्य या आदत होने के संबंध में प्रयोग किया जाने वाला शब्द नहीं है, बल्कि यह मसीह के लिए अलग होने के लिए किया गया शब्द है। जब आप मसीह के लिए अलग होते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं और आपके चाल चलन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। मेरे मित्रों, चुनी हुई अर्थात शुद्ध पशु की दूसरी पहचान थी कि वह जुगाली करता था। हमारे लिए इसका एक आत्मिक शिक्षा या सिद्धांत यह है कि हम परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताएं। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, भजन 1 अध्याय की पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ पर शब्द ध्यान करना जुगाली करने के शब्द से संबंधित है। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता रहता है। यह जुगाली करना गाय या भैंस का उदाहरण है, क्योंकि गाय व भैंस का एक विचित्र पेट है। गाय या भैंस पहले घास या चारा खा लेती है और फिर पेड़ की छांव में बैठकर आराम से जुगाली करती रहती है। इससे वह घास उनके पेट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचती है। इस प्रकार से घास चबाकर खाने के बाद जुगाली करने का मतलब फिर से घास चबाना है। वह इसे बार बार ऐसा ही करती है। इसी तरह हमें भी परमेश्वर के वचनों के साथ में करना चाहिए। हमें बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ना और इस पर ध्यान लगाना चाहिए। मित्रों, अशुद्ध पशुओं में इस प्रकार की दोनों प्रवृत्तियां नहीं थी। कुछ पशु जुगाली करते थे, परंतु उन्हें पेट के दूसरे भाग में नहीं पहुंचाते थे। सुअर के पास में ऐसी प्रवृत्तियां हैं कि वह दूसरे भाग में भोजन को पहुंचा सकती है, परंतु वह जुगाली नहीं कर सकती। इसलिए सुअर के मांस को खाने के लिए मना किया गया था और उसे अशुद्ध पशु ठहराया गया था, और इस तरह का जीवन जीने वाले जल जंतुओं को भी अशुद्ध ठहराया गया था। आइए हम देखें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जलचर प्राणियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, पंखों वाले और बिना पंखों वाले, ताकि उनको खाया जा सके। उसके बाद आकाश के पक्षियों को भी शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों की एक सूची दी गई। कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो इस प्रकार के नियमों को मूसा के व्यवस्था से जोड़ देते हैं, और वे जानते हैं कि सुअर खाने का क्या परिणाम होता है, और जब कोई मेरे सामने इस प्रकार की खाने की वस्तुएं लाता है तो मैं उसे 12 वचन दिखा देता हूँ। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 11 और 12 पद। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कूरर। कुछ साल पहले मेरे एक मित्र थे जो डॉक्टर का काम करते थे। वे बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के थे। वे बार बार कहा करते थे कि सुअर नहीं खाना चाहिए। एक दिन जब हम कुछ खेल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, क्या कभी आपने शुतुरमुर्ग खाया है? उन्होंने मुझे इस तरह घूर कर देखा जैसे कोई पागल देखता है और कहा, शायद ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। मैंने कहा कि आप ढूंढें, मैं चाहूंगा कि आपको एक दिन भोजन के लिए बुलाऊं और आपको शुतुरमुर्ग खिलाऊं, लेकिन यह भी सुअर खाने के जितना ही बुरा है। उसने कहा, मैं यह नहीं जानता था। तब मैंने उसे उचित रीति से समझा कर भेज दिया और कहा कि वचन यही बताता है जो लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 11 अध्याय में लिखा हुआ है। मित्रों, आइए अब हम दशमांश से संबंधित नियम को देखें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने लोगों को भौतिक रूप से आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, यदि वे उसकी सेवा करें तब उन्हें उन्हीं आशीषों में से दशमांश निकालना था, चाहे वे भूमि की उपज हो या पशुओं के बच्चे, और यह दशमांश प्रभु के सम्मुख ही खाया जाना चाहिए था। इसे मंदिर के पवित्र आंगन में ही खाने का आदेश था। यह प्रभु के सम्मुख एक त्योहार मनाने के जैसा था। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, तो उसे बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल व भेड़ बकरी व दाख मधु व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। मित्रों, यदि वे मंदिर से बहुत दूरी पर रहते थे तब उन्हें यह आदेश था कि वे उस पशु बलि को बेचकर रुपए को मंदिर में ला सकते थे और वहां पर उससे दूसरा पशु बलि खरीद कर चढ़ाया जा सकता था। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, तीन तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। मित्रों, यदि आप नियम और कानून पर ध्यान देंगे या ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वे अपना दशमांश तीन बार देते थे, अर्थात वे एक बार में 30% देते थे, केवल 10% ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 10% का एक हिस्सा तुरंत मंदिर में पहुंचा दिया जाता था, लेकिन इसी दशमांश का भाग तीसरे वर्ष में दिए जाने की भी विधि थी। हम व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 29 पद में आगे पढ़ते हैं, तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता था कि लेवी लोग जो राष्ट्र के लिए आत्मिक सेवा किया करते थे, इसके लिए उनकी भी देखभाल की जाए। मित्रों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस भाग में हम सीखते हैं कि परमेश्वर गरीबों की भी चिंता करता है। मित्रों, आज हमने देखा है कि परमेश्वर हमें शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के द्वारा हमें आत्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो हम सांसारिक महामारी से बच सकते हैं। इतना ही नहीं, हमें दशमांश देने की शिक्षा भी दी गई है, अर्थात हमें प्रभु के दासों का ख्याल रखना चाहिए और जो प्रभु का है उसे उसके भवन में अर्पण करना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के अध्ययन से आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। कृपया प्रभु से प्रेम करें और उसके वचन को पढ़ें और दूसरों को भी बताएं और इस वचन पर ध्यान चिंतन करते रहें। आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम फिर से एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु की संगति में आप सब बने रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।